ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराण वर्क धुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ छठा स्कंद अध्याय 7 इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। श्लोक संख्या 16 से लेकर आज 21 नंबर श्लोक तक। 21 नंबर में तात्पर्य है तो मैं 16 से लेकर 20 तक स्वयं पढ़ रहा हूँ, आप श्रवण कीजिए। एवं चिंतयन स्तस्य मोघो न भगवान गृह्यत बृहस्पतिरंतर बृहस्पतिर्गत दृष्टं गतिमध्यात्ममायया। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान बृहस्पति उनके भाव को जान गए, अतः अदृश्य होकर वे अपने घर में चले गए। क्योंकि राजा इंद्र की उपेक्षा वे आत्मज्ञान सॉरी राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। गुरुर्नाधिगतं संज्ञं परीक्षन् भगवान सुराट ध्यायन् दिव्या सुरैर्युक्तः सर्वन्नालभतात्मनः। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। तत्सुत्वा एव असुरा सर्व्याश्रित्य असनसम देवान् प्रत्युद्यतम चक्रु दुर्मदा ततायिनः। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तै विसृष्टः इषुभि तीक्ष्णै निर्भिन्नं गौरु बाहव ब्राह्मणां शरणं जग्मुषः इन्द्रा नतस्कंधरा। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के शरीर जंघाएं बाहें तथा शरीर के अन्य अंग क्षत विक्षत हो गए तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचे। श्लोक 20। तान तथाभ्य दीतान विख्य भगवान आत्मभुवज कृपया परया देव उवाच परिसंत्वयन्। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपनी अहित की कृपावश उन्हें ढाढ़स बंधाया और इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 21। श्री ब्रह्मा उवाच अहोबत सुरश्रेष्ठा हि अभद्रम वह कृतम वह ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यात्न अभ्यनन्दतः। शब्दार्थ श्री ब्रह्मा उवाच। श्री ब्रह्मा ने कहा अहो अहो बत बड़ा आश्चर्य है सूर श्रेष्ठा हे देवताओं में श्रेष्ठ ही निसंद है अभद्रम अन्याय वह तुम्हारे द्वारा कृतम किया हुआ महत महान ब्रह्मिष्ठम परम ब्रह्म के प्रति आज्ञाकारी पुरुष ब्राह्मणम ब्राह्मण का दान्तम मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला ऐश्वर्यात् अपने भौतिक ऐश्वर्य से नहीं अभ्यनंदता उचित रीति से स्वागत किया। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद श्री ब्रह्मा ने कहा हे श्रेष्ठ देवताओं तुम लोग ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञानता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। वे दोहराइए श्री ब्रह्मा ने कहा हे श्रेष्ठ देवताओं तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञानता और इंद्रियों के वश में रखने वाले हैं अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोग ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया। तात्पर्य ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के ब्राह्मण गुणों को पहचान लिया था क्योंकि वे परम ब्रह्म के ज्ञानता होने के कारण देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया था अतः वे योग्यतम ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रताड़ना की क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह बताना चाहा कि किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं होना चाहिए था। जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं अतः उनकी विशेष सम्मान प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसा कहा गया है अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होती है। अत्यधिक क्रोध होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत ही इंद्र का महत्व छोड़ दिया। इस प्रकार महत्व ने इंद्र का सभा छोड़ दिया। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंद के प्रति अपराधी सिद्ध हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को इसका पता था, इसलिए उन्होंने इस परीक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा, सॉरी इस उपेक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा। नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जिसे हम लोग नित्य ही गाते हैं, उनमें कहा गया है कि चक्षुदान दिल जयी जन्मे जन्मे प्रभु से ही। गुरु शिष्य को अत्यधिक गुरु शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं, अतः गुरु को जन्म जन्मांतर स्वामी व प्रभु समझना चाहिए। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए व निरादर नहीं किया जाना चाहिए, किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्य से फूल कर आपने गुरु का अनादर किया। अतः श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की 17वें अध्याय की 27 नंबर श्लोक का उपदेश है कि आचार्य मांग बिजानियात बिजानियात न मन्नेत मर्त्य न मर्त्य बुद्धे न मन्नेत कहिचित न मर्त्य बुद्धे आश्वेत। आचार्य को सदैव नमस्कार करना चाहिए, आचार्य को सामान्य पुरुष मानकर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्म उवाच अहोवत सुरश्रेष्ठा ही अभद्रं वह कृत महद ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणं दान्तं वैषज्यात् न अभ्यनन्दतः। श्री ब्रह्मा ने कहा हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञानता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। ब्रह्मा जी ने इंद्रादि देवताओं को ये वचन बोल रहे हैं, जैसे आप ये प्रसंग पहले से श्रवण करके आ रहे हैं कि किस प्रकार एक दिन देवताओं की सभा चल रहा था, जिसमें इंद्र अपने आसन पर अपनी पत्नी सची के साथ बैठे हुए थे और घिर कर सारे अन्य देवताओं भी बैठे हुए थे। वहां पर नृत्य गीत आदि चल रहा था। और उस सभा में सभी लोग इंद्र का ही जसगान कर रहे थे कि सभी अब जो गंधर्व लोग ने भी इंद्र की ही गंधर्व चारण और जख्य जितने भी सो बैठे हुए थे सभी इंद्र का ही स्तुति कर रहे थे, इंद्र का ही बड़ाई कर रहे थे, इंद्र का ही महत्व को देवताओं के राजा के रूप में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। तो इसी समय उस सभा में बृहस्पति आ गए, बृहस्पति पधारे। और बृहस्पति को देखकर इंद्र ने कोई सम्मान, इंद्र के अन्य कोई भी देवता जितने भी देवता सो बैठे हुए थे उन्हीं के शिष्य थे, किन के सब बृहस्पति के शिष्य है। दो गुरु है संसार में, राक्षसों की गुरु रूप में कौन है, शुक्राचार्य हैं। कवि नांग मसुना कवि गीता में भगवान कहते कि जितने भी बुद्धिमान मनुष्य संसार में है उनमें से मैं कौन हूं, शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य भी विभूति है भगवान की। तो इसी प्रकार देवताओं के गुरु रूप में कौन प्रसिद्ध है विशेष रूप में, बृहस्पति है। लेकिन दोनों में बृहस्पति को विशेष रूप में ब्रह्मवेता बा ब्रह्मज्ञानी कहा गया है, क्योंकि हम देखे कि बलि महाराज के प्रसंग में दो शुक्राचार्य कैसे इनको उपदेश दे रहा था है? वो सर्वस्व वामन देव को देना चाहते थे, वो कहा कि नहीं इसको नहीं देना, सब नहीं देना है। तो इसका मतलब वो भौतिकवादी बुद्धि में लिप्त थे, लेकिन बृहस्पति को भी ऐसा नहीं किया। इन्होंने सदा देवताओं की जब भी उनसे सलाह लेते थे उनको यही सलाह देते थे, किसकी भक्ति करने के लिए, भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए। इसलिए ये ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणन, ये ब्रह्मिष्ठ थे, ब्रह्म में निष्ठ था। जैसे पहले श्लोक में कहते ब्रह्मिष्ठम परम ब्रह्म के प्रति आज्ञाकारी पुरुष कौन थे, बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में ब्रह्मा जी स्वयं कहते कि ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं, वो ब्रह्मिष्ठ थे, ब्रह्मज्ञानी थे, परम ब्रह्म ज्ञानता और इंद्रियों को बस में रखने वाले थे। ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मण के पास में जो गुण होता है भगवान ने स्वयं गीता में कहते कि सम दम तप शौच ख्यांति आर्ज वैवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के स्वभाव जात कर्म है कि तपस्या करना, शरीर इंद्रियों को संयमित करके रखना, मन को संयमित करके रखना, सम दम तपस्या करना, तप शौच सदा पवित्र, बाह्य रूप से और अंतकरण से। बाह्य रूप से तीन बार कम से कम ब्राह्मण को डेली क्या करना चाहिए, स्नान करके गायत्री जपना चाहिए। बाह्य शुद्धि स्नान के माध्यम से, अंतकरण की शुद्धि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीन बार तो गायत्री जपेगा, इसकी अला जब भी समय मिला सब समय भगवान के नाम है जप और कीर्तन में लगा रहता है। इसी प्रकार शुचि, सम दम तप शौच, सम तप शौच ख्यांति, ख्यांति का अर्थ सहनशीलता, टॉलरेंस। ब्राह्मण सहनशील होता है, सहन करता है। लेकिन यहां पर बृहस्पति ने छोड़ के चले गए तो सहन नहीं किए, मैंने तो उनका थोड़ा सा अपमान, वो लोग उनको प्रणाम नहीं मैंने, लेकिन वो उनकी अच्छे उद्देश्य था कि उन्हें सिखाने के लिए, किनको, देवताओं को। आज गुरु को अपमान किए फिर काल भगवान को अपमान करेंगे, हैं ये स्वभाव बन जाएगा, ये सोचकर उनकी भलाई के लिए ही स्थान छोड़ के चले गए। ख्यांति ने सम दम तपो सोच ख्यांति आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान अस्तिकम, धर्म के मार्ग पर चलना, थ्योरेटिकली शास्त्र के ज्ञान को ठीक से जानना और इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, इसको विज्ञान कहते हैं। दैनंदिन जीवन में शास्त्र के सिद्धांत को उतार लेना, उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान अभिज्ञान अस्तिक्यं, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे गुण था किनके पास में, बृहस्पति के पास में। ब्राह्मण प्रभु कहा जाते कई स्तर होते हैं, जो कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारे दी जो उच्यते वेद पठित भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म ज्ञानी है जानता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, केवल ऐसे थ्योरेटिकल नहीं, इसको जो अनुभव किया है प्रैक्टिकल जीवन में। तो इस प्रकार ब्राह्मण थे बृहस्पति ने, जिसको ब्रह्मा जी ने कहते कि वो ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं, ब्राह्मण थे ब्रह्मनिष्ठ थे। और दांतम मन तथा इंद्रियों को संयम करने में करके रखे थे। और आप लोग ने ऐसे ही महान पुरुष को, जिनको फिर आप किस रूप में बना, किस रूप में स्वीकार किया था, गुरु रूप में, ऐसा व्यक्ति को तुम लोग सम्मानित नहीं किया, किसी ने नहीं किया ना, ऐश्वर्यात न अभ्यनंदत, आप ऐश्वर्य के मद में इतने चूप इतने मत्त हो गए थे, पागल हो गए थे कि आप लोग इनको सम्मानित नहीं किया, न अभ्यनंदत, इनको सम्मानित नहीं किया। ये केवल ब्राह्मण भी नहीं थे, ये वैष्णव भी थे, कौन बृहस्पति, कोई वैष्णव हुए भी ना कोई गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए कहते कि षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सुपच गुरु। छह कर्म ब्राह्मण का जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये षट कर्म में निपुण होने पर भी यदि अवैष्णव है वो गुरु नहीं बन सकता। अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव सुपच गुरु। यदि वैष्णव कुत्ता भक्की चांडाल परिवार में भी जन्म लिया हो, लेकिन यदि प्रामाणिक आचार्य के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके ही और भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है तो गुरु बनने की योग्य है। जैसे हम स्कंद में देख रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा पाश्चात्य जगत में जो मिलेच्छ जवनों को भी आचार्य के पद पर स्थापना कर दी। इसलिए ये जो कि बृहस्पति ने कहते कि ऐसे जो गुरु है, जो महा जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्राह्मण है, जिनकी इंद्रियां संपूर्ण रूप में संयमित था, जो आपकी गुरु की पद पर अधिष्ठित थे, तुम्हें अपने ऐश्वर्य के मद में इनकी इनकी इनके स्वागत नहीं किया है। कुंती महारानी कहते कि जन्म ऐश्वर्य सुत शिविर यदमान मद पुमान, यह हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं। क्या क्या जन्म, यदि विशेष अच्छे परिवार में किसका जन्म होता है, स्वाभाविक है उसके मन में क्या होना, अहंकार है आना कि मैं इतनी बड़े फैमिली से हूँ, इस परिवार से आया हूँ, वह उसी परिवार में जन्म लेकर उसका अहंकार होता है, तो कहता कि मेरे पिताजी ऐसे मेरे हमारा फैमिली हमारे पास बड़े को उसी के आधार पर वो अहंकार में मत्त हो जाता है। ऐश्वर्य विशेष रूप में ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने से, जैसे यहाँ पर देवताओं की स्थिति किसके लिए हुआ, ऐश्वर्यवान है, बहुत ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यशाली थे। जन्म के कारण तो नहीं हुआ, क्योंकि जन्म तो राक्षस लोग भी, कश्यप मुनि के पुत्र है, राक्षस भी पुत्र हैं, ये भी पुत्र देवता है, इनमें बड़ा बात नहीं, राक्षस भी कहेंगे हम भी कश्यप मुनि के पुत्र हैं, राक्षस देवता लोग भी कश्यप मुनि के पुत्र थे, लेकिन माँ अलग अलग है, उनकी अदिति माताजी देवताओं की माँ अदिति है, और जो दोनों के पुत्र दानव और अदिति की ने सॉरी दिति के पुत्र दैत्य, दैत्य और दानव ये दोनों को राक्षस कहते हैं, कि भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते हैं। इसलिए जो भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं उनको देवता कहते हैं और वो वैष्णव है, और जो भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते हैं तो उनको ही दैत्य व दानव व राक्षस कहते हैं। तो इसलिए कहते कि आप कैसे, ब्रह्मा जी कहते कि आप ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण महान वैष्णव आचार्य, जो कि आप लोग ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया था और उन्हीं का ही अभिवादन नहीं किया सभा में है। वो आए और आप साधन तो ये हो जाता है, जैसे प्रभुपाद लिखते कि ये होता है, जैसे डेली हम ज्यादा हम आते आने जाने पर हमारे मन में ऐसे सोचते कि अरे गुरु के पास में जो साजा सन्निकट में जो आता जाता है फिर क्या सोचता है, अरे आम भी खाता है ये भी खाते हैं, आम भी सोते ये भी सोते हैं, हम भी बाथरूम में जाते हैं वो भी बाथरूम में जाते, वो भी जाते हम भी जाते, सब ऐसे फिर आपने कंपेयर करने लगता है। बोले तो ये साधारण एक्टिविटी, जैसे उनका है मेरे में भी ऐसा ही करता है, ऐसा ही सोचते सोचते आस्ते आस्ते हम सोचते हैं गुरु और हमारा कोई ज्यादा अंतर नहीं है, फिर गुरु को हम साधारण समझना चाहते हैं लगते। तीसरे अपराध, हम गुरु की अवज्ञा कब करते हैं, जो गुरु को साधारण समझते हैं, गुरु को साधारण समझने अपराध होता है। इसलिए तीसरे अपराध है कि गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो यहां पर देवता लोग ने ऐश्वर्य के मद में इतनी अहंकारी बन गए थे कि ये बृहस्पति की महत्ता को नहीं समझे, हैं सोचे अरे ये तो डेली आते हैं सभा में, हर दिन सभा में आते हैं, ऐसे डेली प्रणाम करने का क्या जरूरत है, एक बार कर लिए बस, कोई नया व्यक्ति नया आता है कुछ बात जरूरी है ऐसा कर लिए, लेकिन ये तो हर दिन आते हैं सभा में बैठते हैं तो क्या है ना, तो ऐसे ही सोच लिया है। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं और तो उनके विशेष सम्मान प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ? लेकिन नहीं, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि हाँ? कितनी बार डेली गुरु को स्मरण करना बार सम्मानित करना चाहिए, मिनिमम है जप त्रिसंध्यम है, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादात नगति कुतोपि ध्यायन स्तुवन तस्य जस त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कम से कम तीन बार त्रिसंध्या में जब ब्राह्मण गायत्री जपता है तब तो गुरु को स्मरण करना चाहिए। कोई कोई भक्त है जिन्होंने जब गायत्री जपते तो गुरुवाष्टक गाते हैं, गुरुवाष्टक गा के फिर गायत्री करते, तीन बार हमको गुरु की सम्मानित करना चाहिए, तीन बार गुरु के स्मरण होना चाहिए, जप त्रिसंध्या तीनों संध्या में है। लेकिन देवता लोग सोचे कि एक सभा में आते तो कहते अरे डेली आएगा, ये तो डेली आने वाले हैं आते हैं बैठते हैं, अरे क्या है ज्यादा सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, गुरु साक्षात भगवान की प्रतिनिधि है। इसलिए सातम श्लोक में विष्णु चक्र ठाकुर कह दे गुरुवाष्टकम साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यते वसद्भि किंतु प्रभुर्जिया प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद, क्योंकि भगवान हरि को अति प्रिय है, इसलिए भगवान की महान भक्त होने के नाते इनको भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो कहता है कि केवल मैं आपका भक्त हूं और मेरे भक्तों को सम्मान नहीं देता है वो मेरा भक्त नहीं है, भक्तैर भक्त जनप्रिय, जो भक्तों की आश्रय करके रहता वो भी मुझे प्रिय है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको ढाड़स बनाए, उनको डांटा कि अरे सूर्यश्रेष्ठ अहो बतः सूर्यश्रेष्ठ आप लोग क्या किया बतः, अर्थात बड़ा आश्चर्य की बात है आप लोग कैसे कितने बड़े आश्चर्य, आप लोग सूर्यश्रेष्ठ हो देवता माने जाते हो, देवता का अर्थात विष्णु के भक्त हो हैं, लेकिन ऐसे अभद्र व्यवहार कैसे किया, ऐसे महत्पुरुष के साथ अभद्र व्यवहार किया आप लोग, जानते हुए गुरु के आप यदि कोई किसी प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य या आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों ही प्राप्त होती किसकी कृपा से, गुरु कृपा से, यदि गुरु विशेष में आपको भौतिक ऐश्वर्य देने के लिए उत्तरदायी नहीं है बा उनके लिए उनका मुख्य कर्तव्य नहीं है, आपको आध्यात्मिक दिग में भगवत भक्ति भगवान भवानी चरण में प्रेम प्रदान करने के लिए वो आपको ट्रेंड अप करते हैं, आपको प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन उनकी कृपा से भी भौतिक ऐश्वर्य भी संपदा भी बढ़ता है, देवता लोक सकाम भक्त है, ये भक्त है लेकिन किस प्रकार के भक्त हैं, सकाम भक्त हैं, इनको भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, ऐश्वर्य के लिए वो तो भगवान को भी टाल देते हैं, भगवान को भी टाल दिया ना, जो भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर गए थे ये नरकासुर था भूमि के भूमि और बराहदेव के पुत्र जो कि बड़ा उत्पात मचाया है भूमासुर ने, वो स्वर्ग में जाकर देवताओं को परास्त करके माता अदिति के कुंडल को काम से छिनकी भी लेके आ गया था है? भगवान ने जो लोग देवता लोग आके फिर भगवान को कहे, भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से कहे, तो भगवान ने कहे कि ठीक है, द्वारका में थे, द्वारकाधीश के रूप में गए और वो नरकासुर को वध किए, भूमासुर को वध करके सारे 16,000 राजकन्या को भी मुक्त कराए। उसके बाद कहे कि माता अदिति का कुंडल ये छीन के लाया था, इसको लेके वापस करते हैं, इसको वापस देने के लिए स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जब माता को अदिति के कुंडल देकर वापस आ रहे थे, स्वर्ग में पारिजात पुष्प है, देखिए सत्यभामा कहे कि मुझे ही पारिजात पुष्प चाहिए मेरे के बाल को सजाने के लिए, कैसे को संभाल करके उसमें धारण करना चाहती। भगवान बोले ओ ये कौन सा बात है, भगवान तोड़ने के लिए गए हैं, थोड़ा तुरंत आ गए हैं। सच्ची जो इंद्र की पत्नी है, तुमने कहे कि देखो ये मर्त्य लोक के रहने वाले हैं, मनुष्य है, ये आके स्वर्ग के फूल कैसे ले जाएंगे हैं। इंद्र ने आ गए, बोला नहीं नहीं तोड़ना नहीं हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, किसके लिए है, स्वर्गवासियों के लिए है। इतनी मूर्ख है, गोवर्धन धारण लीला में भी वैसे पहचाना था किसको, कृष्ण को जानता था कि नहीं, तो गोवर्धन को भगवान ने उसे उठाए थे 7 साल उम्र में, उस समय बहुत स्तुति भूति करके भगवान को पटाया था सुरभी गाय को लेके फिर हैं। लेकिन अभी देखो हैं, पत्नी की बुद्धि में बोला कि चलो नहीं नहीं तोड़ सकते, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए सारे देवता आगे, चाहे युद्ध गया था भगवान कहीं बहुत आसान से परास्त करके सुभागा दिया, और बोले कि पेड़ क्या फूल क्या तोड़ूंगा, पूरा पेड़ को उखाड़ के लेके जाता हूँ, पूरे पेड़ को उखाड़ के लाकर सत्यभामा की हैं जो महल के सामने ही इसको लगा दिए द्वारका में। इतना नहीं कह कि देवताओं की घमंड हमेशा आता है, इसलिए जो बैठने वाला जो सभा इनकी है ना, सुधर्मा सभा है, ये सुधर्मा सभा जिसमें बैठकर देवता लोग ने मीटिंग करते हैं, बाद उनका कक्षा चलता क्या मीटिंग चलता है, बाद नृत्य गीत जो भी करते हैं, वो कक्षा का विशेषता क्या है, हमारा एसी हॉल है इधर, एसी हॉल बना देते ना कोई विशेष, एसी हॉल का अंदर गर्मी ठंडी नहीं लगता है सबका, लेकिन वो सुधर्मा सभा के अंदर बैठेगा तो आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगा, किसी प्रकार के रोग व्याधि का कष्ट आपको नहीं मिलेगा है, पूरा स्वस्थ बैठा रहोगे, जब तक बैठा रहे आपके शरीर में किसी प्रकार के रोग व्याधि कोई दुश्चिंता ऐसा कुछ नहीं आएगा, पूरे आराम से बैठो हैं, खारा भूख प्यास भी नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहे कि ये सभा जब तक इनके पास रहेगा ये घमंड इनके बढ़ते रहेगा, इसको याद दिलाना चाहिए, इसलिए भगवान ने पूरे उठा के ले आए, इसको सुधर्मा सभा को लाकर द्वारका में रख दिए थे, जब तक भगवान द्वारकाधीश थे सुधर्मा सभा वही था कहाँ द्वारका में, तब देवतालों को सब समय याद रहा हम कितनी बड़ा मिस्टेक, ये सब समय भूल जाते हैं। अभी भी देखिए ऐश्वर्य की मद में जो रहता है ऐसे भूल जाने का स्वभाव बन जाता, कोई कहें मिस्टेक करते हैं है? लेकिन जो भक्त, क्योंकि ये सकाम भक्त, इसलिए सकाम भक्त और निष्काम भक्त में बहुत अंतर है। महाराज अम्बरीश थे निष्काम भक्त, वो भी पृथ्वी विश्व के सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा मिस्टेक नहीं किया अपने जीवन काल में, नवदा भक्ति के सारे अंग को उन्होंने जीवन में उतार लिया था, इसलिए इतने बड़ा कौन जोगी दुर्वासा उनके साथ में टक्कर देगी, समझा कैसे पार, वो भी इंग्लिश क्लास में वो चल रहा है दुर्वासा मुनि के और अम्बरीश महाराज के प्रसंग है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहते कि तुम लोग क्या किया, गुरु के चरण में अपराध, इसकी कोई निराकरण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते कि पागल हाथी के समान है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े बा छिंदे तार सुखी जाए पता है। यदि किसी ने किसी कारण से, वैष्णव की कृपा से ही भक्ति प्रारंभ होती है, भक्ति कैसे प्रारंभ होती है, भक्ति भक्त संग न उपजाएते हैं, भक्तों की संगति से भक्ति की शुरुआत होती है, हैं? वही भक्तों की संगति में भक्ति प्राप्त होता है, और भक्तों की कृपा से ही, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसारन है क्षय, किसी महान पुरुष महान वैष्णव की कृपा नहीं होने से कृष्ण भक्ति का शुरुआत नहीं होती है। कृष्ण भक्ति क्या था, दूर के बात है, संसार के प्रति जो आकर्षण है ये समाप्त नहीं होगा जब तक किसी महान वैष्णव हम कृपा आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए भागवत की जड़ कहते कि भागवत के प्रारंभ से नारद मुनि अपने जीवन की इतिहास को कहकर अपने पुत्र व्यासदेव को समझाया। सर आपने आध्यात्मिक को तुम्हारे इनके शिष्य को समझाया हाँ कि देखो मैं जो भी नारद मुनि के पद पर अधिष्ठित हूं, भक्ति के आचार्य बन के रहा हूं, ये किसकी कृपा से है? परमहंस वैष्णव लोक ने मुझे कृपा आशीर्वाद किया था, उनके सेवा करके इनको प्रसन्न किया था, इसी पद उसी उनके आशीर्वाद के बल पर मैं तो ब्रह्मा जी का अभिशाप से भी मुक्त हो गया था। ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिए थे दासी पुत्र बन के रहने के लिए, उससे मुक्त होकर मैं परम वैष्णव आचार्य महान भक्ति के आचार्य नारद मुनि के पद पर अधिष्ठित हो गए। इसलिए वैष्णव की कृपा होने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और यदि वही वैष्णव के चरण में अपराध करेंगे तो हम भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। उन्हीं की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं की यदि उनको रुष्ट करेंगे यदि कहते कि गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखीते ना पारे, कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखीते पारे। यदि किसी कारण से भगवान के चरण में अपराध किए हो, भगवान नाराज हो गए, आप उनके शुद्ध भक्त के शरण में आओगे तो आपको शरण देकर रख सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मय दानव को वध करने के लिए कहे कि सूर्यास्त पहले इसको मार डालूंगा, लेकिन वो नारद मुनि ख्याल लगाने वाले उसको बुद्धि दे दिए अर्जुन के पास जाओ, और अर्जुन के शरण में चला गया तो क्या करेंगे? भगवान अर्जुन के साथ में लड़े आए, देखे कि अर्जुन के शरण में लेके रखा है भगवान, अरुण तो भगवान ने फिर अपना वचन को टाल उठा लिया। नहीं, मैदान अब खुश हो गया पांडव लोगों के प्रति, इसके लिए उनके लिए इंद्रप्रस्थ नगरी बनाया। यदि किसी ना किसी कारण से वैष्णव नारायण नहीं गुरु नेसरी कृष्ण नाराज हो जाते हैं तो गुरु या वैष्णव हमको आश्रय देकर फिर भी रख सकते हैं। कई कहानी पुराण में है, महाराज चित्रकेतु का सॉरी महाराज सॉरी वो गंधर्व था, चित्रसेन गंधर्व की कहानी भी है। गालब ऋषि ने सरजू नदी में सूर्य तर्पण कर रहे थे और ये जा रहा था आकाश में गंधर्व, थूक दिया, थूक आकर उनकी तर्पण जल में गिरा। मुनि कुछ बोले नहीं, चाहते थे उसको अभिशाप दे के वहीं गिरा देते, लेकिन वो बोले कि मैं अपना की तपस्या कैसे नष्ट नहीं करना चाहिए, अभिशाप देने से स्वयं का तपशक्ति भी घटता है। तो कहे कि भगवान रामचंद्र जी को विचार करेंगे, रामचंद्र जी के पास में आके कंप्लेन की। रामचंद्र जी ने कहे कि ऐसे जो मेरे राज्य में ब्राह्मण के ऐसे दुराप ऐसे अपमान, मैं इसको सूर्यास्त पहले इसकी नाम निशान नहीं रखूंगा, समझाए इसको बध कर दूंगा। रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर तो वो कंपने लगा, कौन चित्रसेन गंधर्व ने। नारद जी आ रहे थे, बोले क्या हो गया गंधर्व जी, इतनी दुखी हो गए, क्या हुआ? नहीं ऐसे ही से भगवान रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा कर दी, सूर्यास्त पहले मुझे मार डाल। नारद जी कहे चिंता मत करो, बताता हूं ना क्या करना, जाओ। उनकी भक्त है ना हनुमान, हनुमान जी की माँ है अंजना, अंजना स्नान करके सुबह सुबह आती ना, और कुछ ना किसी को जो सामने आती है उसको शरण में रखती है, उसको जो इच्छा पूर्ण करती है उसका संकल्प है, जो चाहते ना सुबह सुबह प्रणाम करना जाएगी। अंजना स्नान करके आ रही थी, नीचे शास्त्र दंडवत करके पड़ गए ये चित्रसेन गंधर्व, कहे क्या न मुझे कोई प्रतिज्ञा किया मेरे मार डालेगा, मैं तो आपके शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, नाम तो नहीं बताया कौन ने। बोला ठीक है आ जाओ, मेरा एक बेटा है तुझे रक्षा करे, आ जाओ, तेरे जान जद नहीं रहेगा मैं भी नहीं जीवित रहूंगी, मैं तो शरण में दे चलो। हनुमान जी पूछे भाई कौन है तेरा शत्रु, कौन प्रतिज्ञा किया? कहे कि राम जी ने प्रतिज्ञा किया। हनुमान जी ने कहे कि माँ तू किसको शरण में दिया, शरण में लिए मेरा प्रभु का त्रोही है। तो माँ ने कहे कि मैं तो मेरा भी सत्य वचन है, मैं तो किसको शरण में रखती हूं, अब मैं तो उसको त्यागती नहीं, अभी यदि इसके मृत्यु हो जाएगा मैं भी जान नहीं रखू। बड़ा धर्म संकट में आ गए वो हनुमान जी, क्या करेंगे, कुत्ते के अंदर में बैठा दिए, तो अंदर में माँ के साथ वो बैठा है दर्जे पर बैठा रहे कौन हनुमान जी, बैठकर सीताराम 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 अपने बस भजन करने लगे। तीनों लोक में रामचंद्र ढूंढ लिए, कहीं मिलता नहीं है। नारद जी कहे कि क्या ढूंढ रहे प्रभु, चित्रसेन गंधर्व बोलिए आपका इस दास के शरण में ही है, उसको तो हनुमान ही शरण दे के रखा है। बोले अरे ये कैसे संभव है? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, नारद जी को बड़ा खड़ा अच्छा आनंद लगता था, पहुंच गया आके आग देखे कि हनुमान तू मेरा शत्रु को अंदर में रखा है, चित्रसेन को मैं प्रतिज्ञा लाऊंगा बध करूंगा, रास्ता छोड़। हनुमान जी कुछ बोले नहीं, रास्ता नहीं छोड़ू, बेचे माँ के उसके माँ ने इसको शरण देकर रखा है, बैठ कर अपने केवल सीताराम 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 भगवान भजन करने लगे अंग हैं। हनुमान रामचंद्र जी हनुमान को हटाए बिना तो अंदर नहीं जाते, जितने भी तीर छोड़े हनुमान जी को चुंबन देकर वापस आ गए, क्योंकि भगवान के नाम उनके नाम लेते हैं, राम से बड़ा राम का क्या करेंगे, रक्षा होगी उसकी, किसका बच गया चित्रसेन के अंदर, रामचंद्र समझ गए हनुमान शरण देकर रखा तो मेरा हिम्मत नहीं इसको वध करने का है। इसलिए यदि किसी भक्त को यदि भगवान की द्रोही होता है, कृष्ण रुष्ट हैले हैं कौन गुरु राखी थे पारे, लेकिन गुरु रुष्ट हैले कृष्ण राखी थे न पारे, वैष्णव अपराधी को भगवान को अभी भी नहीं रखते हैं शरण में हैं, दुर्वासा को नहीं रखे, वापस भी जाओ ये ब्राह्मण भी था सब कुछ हैं, लेकिन कहे कि नहीं मेरे भक्त के चरण में गिरना पड़ेगा, वहीं जाओ अम्बरीश के चरण में हैं, वहीं क्षमा करेगा दूसरे नहीं। इसलिए कई उदाहरण है, गुरु कृपा से ही हमें उसी बात ब्रह्मा जी दांत रहे देवताओं क्या किया तुम लोग, जिनको गुरु रूप में चुना चुना है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, आचार्य के पद पर है, प्रभुपाद ने कोट करते कि आचार्य मान बिजानिया, भगवान ने उद्धव को कहा 11वें स्कंद में कि आचार्य जो है मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं, है? भगवान भगवान से और उनमें ज्यादा अंतर नहीं देखने, उनको सम्मानता समान स्तर पर की जाती है, लेकिन क्योंकि भगवान का ही महान शुद्ध भक्त है, तो तुम लोग क्या किया है? गुरु की चरण में अपराध ही सबसे घातक अपराध है, यदि वो नाम अपराध में दो वैष्णव अपराध है, पहला अपराध जो हरिनाम की प्रचार प्रसार में जीवन को समर्पित किया है, जिनके जीवन समर्पण कर दिया है उनकी निंदा करना, तीसरे हैं गुरु की अवज्ञा करना, ये दोनों में से प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे ज्यादा घातक कौन सा है, गुरु का अवज्ञा करना है? क्योंकि गुरु जो है ये महान उत्तम वैष्णव है, हमें कोई अन्य अन्य कहीं अज्ञान के कारण प्रारंभिक दिन प्रारंभिक भक्ति में प्रारंभ करने के समय में कई छोटे मोटे अपराध इधर उधर करते हैं, है? लेकिन क्योंकि एक उत्तम वैष्णव हमको शरण में लेकर चरणाश्रय करके रखा है, इसलिए उसकी ज्यादा हानि नहीं होता, वो क्योंकि वो उनको आश्रय देकर रखे हैं, इसलिए भगवान ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ये घातक होगा, इसलिए गुरु का कर्तव्य है शिष्य को देखता कि कहीं छोटा मोटा अपराध कर रहा है उसको समझाना, ए तुम ऐसा नहीं करना, जो जैसे मुझे व्यवहार कर रहा है ऐसे मेरे गौरव मेरे गॉड ब्रदर को भी ऐसा ही व्यवहार करो, वो भी वैष्णव है, सिखाना गुरु का काम है, लेकिन जब वही जहां पर जिसके आश्रय में रहकर वो भक्ति कर रहा है उसी के चरण में अपराध करेगा तो क्या होगा, है यदि गुरु रुष्ट हो गए किसी ना किसी कारण से, गुरु रुष्ट है ले कृष्ण राखीते ना पा रहे, कृष्ण नहीं रखा करते, क्योंकि आपसे कई लाखों गुण की प्रिय है भगवान को, इसलिए जैसे दुर्वासा को भी यही बात कह रहे थे, दुर्वासा को भगवान कह रहे थे इनडायरेक्टली, अरे ये अम्बरीश मेरे लिए सब कुछ अर्पण कर चुका है, तुम क्या किया मेरे लिए, तुम मुझको क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो खाली अपना तपस्या करके क्रोध उत्पन्न किया और अभिशाप देते रहा सब लोगों को, लेकिन अम्बरीश तो सब कुछ मेरे चरण में अर्पण कर चुका है, निछावर कर रखा है, तुमको क्या किया कि मैं तुमको रक्षा करूंगा, मेरे भक्त को छोड़ के तुझे रक्षा करूंगा, है साधव हृदय मह्यं साधुनां हृदय तु अहम मत अन्यते न जानन्ति नाहंग तेभ्य मनागपि, मेरे भक्त मेरे हृदय में निवास करता, मैं भक्त के हृदय निवास करता, मेरे अला मेरे भक्त कुछ नहीं जानता, मैं भी मेरे भक्त के अला दूसरे कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए वैष्णव अपराध बड़े घातक है, वो है हंती निंदंती नाभिनंदंती क्रोध्यंती जानती न हर्षम दर्शनी पतनानी, सब छह क्रियाओं से वैष्णव अपराध होता है। यहां पर इंद्रादि देवता लोगों ने कौन सा अपराध किया, न अभिनंदंती, इनको आकर देखकर सभा में प्रवेश कर रहे हैं, तुरंत इनको आसन से खड़ा हो जाना चाहिए था, है? सभी लोग अपने अपने आसन से गुरु गुरु आप पधार रहे हैं तो विशेष व्यक्ति, इसलिए हमको भी सीखना चाहिए, कभी ऐसे अपराध होता है हम सोचते कर रहे हो तो डेली आते हैं, लेकिन गुरु जब प्रवेश करते हैं किसी महान आचार्य वैष्णव प्रवेश करता है तुरंत हमें क्या करना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव को देखकर इनके अभिवादन करना चाहिए अधिकार के आधार पर। रूप गोस्वामी कहते कि तीन प्रकार के कैटागोरी के वैष्णव है, इनको इनके अधिकार के प्रति ध्यान देकर इनको अभिनंदन करो। हैं कृष्ण तेजस्य गिरित मनसा आद्रियत, कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा मुख से, चाहे वो विधि निषेध पालन कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन इनकी कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा मन से मुख से, इसलिए इसको मन से आदर करना चाहिए। हरे कृष्ण मनसा आद्रियत दीक्षा स्थित प्रणते भीष भजन तमीश, दीक्षा ले चुका प्रामाणिक गुरु से और भागवत पढ़ रहा जपा कर रहा अर्च विग्रह की अर्चना कर रहा, ऐसे भक्तों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, मुंटन लगा के प्रणाम करना चाहिए। हाँ जमीन में पंच अंग को स्पर्श करना चाहिए जमीन में, हाथ दोपहर नहीं पैर सिर है, पंचांग प्रणाम दोनों हाथ दोनों पैर और सिर। यदि कोई और आगे बढ़ा हुआ है शुश्रूषया भजन अभिज्ञ अनन्य मन्य निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करते हैं, इससे परे हैं, जो शत्रु मित्र किसी को नहीं देखते हैं, जो इस उत्तम उत्तम कोटि की वैष्णव है, जो सब कुछ भगवान के चरण में नछा गुरु कृष्ण के चरण निछावर कर चुका है, ऐसे वैष्णव जो किसी के इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, अष्टांग के साथ इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये यदि नहीं किया आप वैष्णव अपराध कर रहे हो, ये न अभिनंदनती है, इनको अभिवादन नहीं करने से अपराध होता है उनके अधिकार के आधार पर है। तो इसलिए वैष्णव को सम्मान देना हमारा कर्म है। वैष्णव डिक्शनरी में कहीं लिखा नहीं कि किसी को असम्मान करना है। वैष्णव को सदा देखकर अन्य वैष्णव कोई पधार रहा है हर्षित हो जाना चाहिए। हम क्या करते, कोई आते रास्ते में चल रहे कोई आ गया सीनियर वैष्णव, अरे वही प्रणाम करना पड़ेगा, यस कहाँ सामने आएगा, घूम के रास्ता घुमा के निकल गए। लेकिन भगवान जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, भगवान को पता है तुम्हारे चिंतन को पता है, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। न अभिनंदन्ति, अभिवादन देने में कभी इनकार नहीं करना चाहिए। वैष्णव को देखकर हर्षित हो जाना चाहिए हैं प्रभु है? कोई कोई अनजाने व्यक्ति भी कोई कहीं से आ रहा है, उसके मैंने देख रहे कि तिलक कंठी धारण किए हैं वैष्णव है, हाँ तुरंत इसको भी अभिवादन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु के मेरे लायक कोई सेवा है तो बताइए हैं, कुछ सेवा कर सकता हूँ, हम दास सेवक है, इसलिए नाम हमारा पीछे नाम के पीछे क्या लगा गया है दास। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में साक्षात आदर्श दी गई है दो व्यक्ति का, ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी है, सॉरी ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे महान भक्त माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए गोपाल जी प्रकट हुए हुई श्रीनाथ जी के रूप में पूजा प्राप्त करते हैं। ये माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, एक ईश्वरपुरी थे और दूसरे रामचंद्रपुरी। अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी अपने समय को रेमुणा में बिता रहे थे खिरचूर गोपीनाथ के चरण में, लेकिन अपने गोपाल की याद सब समय रहता था, गोपाल को छोड़ के गए थे कहाँ गोवर्धन में, इसलिए कहते कि वही दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदा बलोक से हृदय तदाल को कातरम दैत भ्राम्यति किंग करम में, हे दीन दयालु हे नाथ कब मैं आपके दर्शन करूंगा, आपके दर्शन नहीं पाने के कारण मैं मर्माहत हो रहा हूं। प्रकृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये श्लोक को तो राधारानी लिखी थी, कृष्ण के विच्छेद के कारण मथुरा चले गए कृष्ण द्वारका चले, तो उन कृष्ण विच्छेद में राधारानी ने श्लोक को गा रही थी, राधारानी की कृपा से ये श्लोक माधवेंद्रपुर के मुख से उच्चरित हुआ था। वही दीन दयार्थ हे दीन दयालु नाथ हे मथुरा नाथ कब मैं आपके दर्शन करूंगा, जब बिहोर होकर मैं ऐसे ही श्लोक को आवृत्ति करके बार बार प्रेम में बिहोर होकर जिनके बाह्य ज्ञान संपूर्ण लुप्त हो गया था, सदा समाधिस्थ रहते थे माधवेंद्रपुरी, कब मलमत्र त्यागते थे उनको पता नहीं था, कब खाते थे इनको कुछ स्मरण नहीं था, उस स्थिति में ईश्वरपुरी उनके साथ में रहकर सोहस्त में उनकी मलमूत्र सफाई करते थे और इनको समय पर स्नान कराना, उनके सारे भोजन लेकर इनको सोहस्त में खिलाते थे, इनको तो उस ऐसे जो उन सेवा कर रहे थे सेवा में प्रसन्न होकर जब वो नित्यालय में प्रवेश कर रहे थे माधवेंद्रपुरी इनको आलिंगन किया, सुरपुरी को आलिंगन करी कहे कि कृष्णे तुमा के हो को प्रेम धन, तुझे भगवान के चरण में प्रेम धन प्राप्त हो जाए। इसलिए कहते कि जो भगवान ने वरदान देने से ये माधवेंद्रपुरी ने वरदान दे दिए, कृष्णा ने सोचे कि ये व्यक्ति मेरी इतनी ये अपने गुरु मेरे शुद्ध भक्त का इतनी सेवा किया है, ये तो मुझे भी अपने चरण में ऋणी बना दिया। भगवान ने सोचे कि मैं इसका कैसे ऋण चुकू। इसलिए भगवान ने स्वयं क्या बन के आए, उनके शिष्य बन के आए। इसलिए ईश्वरपुरी के शिष्य बनकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण पधारे, क्योंकि गुरु को सेवा करके वो इतनी गुरु को प्रसन्न किए, गुरु ने वरदान दिया कि तुमको कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाए। हैं? तो ये आशीर्वाद ऐसे लाखों जन्म के साधन में प्राप्त नहीं होते हैं, केवल वैष्णव की सेवा करके उनको प्रसन्न करने से उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरा शिष्य था कौन, वो मायावादियों के साथ घूमते घूमते साउथ इंडिया में इसका है माइंड बिगड़ गया था, वो वैष्णव सिद्धांत को भूल गया था। आज देख रहा हम गुरु के पास आया, देखा कि ये रो रहे कर रहे हैं, क्या कर रही है चल रहे हैं। एक बोला कि यार ये आप सन्यासी हो अंतिम तो गंभीर रहो, जैसे वो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा था किसको वो तो कम से कम इनको गुरु नहीं था महाप्रभु के, तो वो कैसे। लेकिन ये शिष्य होकर गुरु को सिखाने शुरू किया, अभी ब्रह्म में ध्यान करना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए, ये सब क्या है, भावुकता का काम है, रोना है ये ना है। तो माधवेंद्रपुरी ने कहे कि कुलांगार तेरे मुख देख के यदि मेरी शरीर छूटेगा तो मैं कृष्ण प्राप्ति नहीं करूंगा, तू मेरे से चले जाओ, मैं आज से तुझे शिष्य से त्याग दिया, तू मेरे सामने नहीं रहना, चले जाओ यहां से। गुरु त्याग दिए तो क्या, वो भाग गया, चला गया, चला गया, पुरी में पहुंचा, जगन्नाथपुरी में पहुंचा। गौरांग महाप्रभु तो आए तृणानंद सुनी चेन तो मूर्ति मंत अवतार थे, देखे कि ये पधार रहे हैं रामचंद्रपुरी, कहे कि मेरे गॉड ब्रदर के ने सॉरी मेरे गुरु के गॉड ब्रदर है ईश्वरपुरी के, तो इसलिए उनको सम्मानित किए, स्वयं प्रणाम किए, सब महाप्रभु प्रणाम करते हुए देखकर सब लोग प्रणाम किया, उनको स्वागत किए महाप्रभु, लेकिन भोजन कराओ कैसे आए देखो इनको है स्वागत। लेकिन कहे कि नहीं 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 मेरे को भूख नहीं है, आप लोग बैठे मैं खिलाता हूँ, बोले सब बैठा कर मतलब मैं सर्विस करूंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। अब वैष्णव लोग नहीं बैठने, जबरिया बैठा कर और जितने भी वकेट पर था सारे के सारे सर्विस कर, मैंने सर्विस कर चार बार पांच बार मना करते हम खाएंगे नहीं, बहुत पेट भर, नहीं 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 खाओ खाओ महाप्रसाद है यार। सब खिलाने के बाद जो खा लिए तो बोला कि यार जी इतनी इतनी खाते हो, मैं सुना था पहले गौरांग की जो भक्त है बहुत बहुत खाते हैं, मैं प्रैक्टिकल देखा, इतनी इतनी खाते हो तुम्हारा इंद्रिय संयम कैसे होगा, तुम भक्ति कैसे करोगे, कह के उनको उल्टे डांटने लगा। बाद में ऐसे ही घूमते महाप्रभु के पास गया, गंभीरा में गया, महाप्रभु तो देने तक मूर्ति पूरा प्रणाम करे बैठे हुए थे हाथ जोड़ के, कोई भी दोष नहीं देखा, चारों साइड घूमते देखा नहीं, देखा कि चिट्ठी की कुछ दीवार सहारा में कुछ चिट्ठी चल रही है, बोले चिट्ठी क्यों चल रही है इधर, चिट्ठी कहाँ आते हैं, जहां पर मिठाई रहता है, सन्यासी होकर मिठाई खाते हो, डांटने लगा किन को महाप्रभु को, तुम्हारे पास इतने इतने खाते क्योंकि पहले अपराध करके आया कहाँ, गुरु की चरण में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जो गुरु चरण में अपराध करता है आस्ते आस्ते कहां तक वो पहुंचता है, भगवान के चरण में भी पहुंच जाता है। इसलिए भगवान के चरण में, गुरु चरण में अपराध किया फिर भगवान चरण में अपराध करके उसकी आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण रूप में नष्ट भ्रष्ट हो गया, और नर्क जाने के कैंडिडेट बन गया। तो इसलिए हम जानना चाहिए वैष्णव अपराध कितनी घातक है, इससे बचना चाहिए, विशेष रूप में गुरु के चरण में अपराध नहीं करना चाहिए। गुरु चरण में देवता लोग ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया था, लेकिन जब तक हमारा मन में भौतिक इच्छाएं रहेगा ये अपराध होते रहेगा। इंद्र ने अभी तो इससे मुक्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी ने कहे कि विश्वरूप को बनाओ गुरु, कम से कम टेम्परा, फिर दूसरा गुरु बनाया लेकिन फिर उसको भी मार डाला है, इसलिए कि देखा कि विश्वरूप ने राक्षसों का भी हित चाहता है। विश्वरूप यज्ञ कर रहा था तो कहता था कि इंद्राय स्वाहा, जोर से बोल रहा था, थोड़े से धीमा गति में हिरण्यकशिपु स्वाहा, क्योंकि उसका दोनों साइड में था, पिताजी के साइड से देवता, माता की तो माताजी उसका थोड़ा राक्षस की साइड से रिलेशन था। हाँ तो उठा, वही यज्ञ से उठा, माँ ढलाई सोचा नहीं कि गुरु है क्या है, गुरु रूप में स्वीकार किया है, हैं? इंद्र ने ऐसे बार बार, यदि हमारे मन में भौतिक इच्छाएं रहेगा हम बार बार अपराध करते रहेंगे, हैं? जब तक हम निष्किंचन नहीं बनेंगे, हैं? और जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी हम बार बार अपराध करते रहेंगे, इसकी कोई है, हैं? ये समस्या समाधान नहीं होगा। दुर्वासा मुनि ऐश्वर्य कर दुर्वासा मुनि देखे कि एक दिन इंद्र आ रहा है सामने वैकुंठ से, है भगवान की माला, नारायण की माला था गले में, देखिए इंद्र को पहना देता हूँ, इंद्र को पहना दे, इंद्र बोला अरे क्या है मुझे दे दिया, हमारा है हमारा कितनी पारिजात के पुष्प इतने सारे ताजा ताजा फूल है कहाँ से, तो माला को है ज्ञान करके निकाल के किसके ऊपर डाल दिया, हाथी के ऊपर, आपने कहा और हाथी ने किया मारा महामारा के भेडू भुजे वो तो अपने नीचे गिरा दिया और अपने पैर में कुचल दिया। देख रहे थे दुर्वासा क्योंकि इतनी धूर्त है, इतनी ऐश्वर्य की मौत है तेरे पास, जा मरते लोक में चले जा, सुअर का चोनी में चले जा, सुअर बन गया। कितनी बार इंद्र ने सीखेगा लेकिन कभी में नहीं, इसीलिए बार बार मिस्टेक करते क्यों, भौतिक इच्छाओं के कारण। हमारे अंदर में जो भौतिक इच्छाएं हैं भरा रहता है, विशेष रूप में अंतिम स्थिति पर पूजा मान प्रतिष्ठा, इसलिए कहते कि पूजा मान प्रतिष्ठा ये वैष्णव के लिए स्वर निष्ठा समान है। और हमारे अंतकरण में जब तक यही तीनों चीज रहते हैं, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा रहते, तब तक हम अपराध करते रहेंगे, हैं? सिर्फ पहले कुछ हटाना पड़ेगा, अन्य अभिलाषित भक्ति के अर्थ ही अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा उत्तम भक्ति कहते हैं। जिसके मन में अन्य अन्य अभिलाषा नहीं है, हैं? ज्ञानी लोग मुख्य चाहते हैं साजुज्य मुक्ति बा, हैं? और जो कर्मी लोग ने इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, ये दोनों से मुक्त होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की भावना से और मुख्य की भावना से, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, हैं? नहीं तो हम यदि जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छा को समाप्त नहीं कर पाएंगे, हम ये देवताओं की तरह बार बार हम अपराध करते रहेंगे। इसलिए जोर से इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, इसको मन में जो हो कई प्रकार की कामनाएं भरा हुआ है। प्रजाहाति जदा कामन सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मनेव आत्मनतुष्टे स्थित प्रज्ञ तदोचित, स्थित प्रज्ञ स्थिति में तभी आएंगे। भगवान कहते कि अर्जुन को कि जो भी हमारे मन में ये सब जब सर्वदा संतोष रहेंगे, समस्त प्रकार कामनाओं को जब त्यागेंगे, भौतिक कामनाओं से मुक्त होंगे। समय हो चुका है तो इसी पर यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। प्रसाद आ गया आपका, प्रसाद के बकेट आने वाला है, तो कोई प्रश्न उत्तर करने के लिए एक प्रश्न, एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है किसकी? नहीं तो ये इस्कन के तो फेमस स्टेटमेंट है, महाप्रसाद है जग जाते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।